हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यान्ये श्रोत्रादीन इंद्रियाण इंद्रियाण्यान्ये संयमग्नाशु जुहुवती संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादि इंद्रियाण्यान्ये। अन्य लोग, अन्य प्रकार के कर्मयोगी श्रोत्रादि के विषयों को, इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति दे देते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों को रस, रूप, शब्द इत्यादि जो पांच इंद्रियों के विषय हैं उनसे दूर रखते हैं। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए है। शब्दादीन विषयान अन्य, जो अन्य और इसके अलावा अन्य लोग जो हैं, जो संयमित गृहस्थ हैं, वे इंद्रियों की अग्नि में इन विषयों को अर्पित करते हैं, अर्थात इंद्रियों के विषयों को भोगते तो हैं लेकिन संयम से भोगते हैं, भोगों में लिप्त नहीं होते। ये बात यहां बोली जा रही है। इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग यानी नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखते हैं गीता भूषण टीका। नैष्टिक ब्रह्मचारी आदि, नैष्टिक ब्रह्मचारी आदि मतलब नैष्टिक ब्रह्मचारी जैसे लोग कर्ण, नैष्टिक मतलब समझते हैं जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कर्ण इत्यादि इंद्रियों को, कर्ण इत्यादि इंद्रिय का अर्थ क्या हुआ, सभी ज्ञान इंद्रिय, कान, आंख, नाक, त्वचा, जीव नहीं रसना, क्योंकि जीव ठीक है, जीव कह सकते हैं, नहीं तो वैसे वाचा और जीव कह देते। वाचा जो है वाक शक्ति, वह कर्म शक्ति है, और रस जो चखने की शक्ति है वह ज्ञान इंद्रिय, तो दो तरह से कार्य करती है जीव। इसको इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में आहूत कर देते हैं ताकि प्रत्येक इंद्रिय का संयम हो सके। तो ब्रह्मचार्य में आश्रम में तो इंद्रिय संयम स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है? नहीं, स्पेशली ब्रह्मचारी के जीवन, ब्रह्मचारी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जो है वह इंद्रिय संयम की है। तब वह व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अगर जाता भी है तो भी उसकी इंद्रियां संयमित रहती, जो गृहस्थ आश्रम के नियम है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होते। जिस व्यक्ति ने कभी ट्रेनिंग नहीं प्राप्त करी है इंद्रिय संयम की, तो उसको जो नियम बताए जाएंगे गृहस्थ जीवन के, तो उसको लगेगा ये तो टॉर्चर है, इसमें मैं सुखी कैसे रहूंगा। मैं इसको खोल के नहीं बोलना चाहता हूं, ठीक है, समझ गए होंगे। इंद्रियों को निरुद्ध कर लेने के कारण वह संयम प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि वे इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा भोग में लगने देते हैं, इंद्रियों को बिल्कुल निरुद्ध कर लेते हैं। जैसे नहीं कि थोड़ा स्त्री संग चलेगा रेगुलेटेड फॉर्म में, नहीं है, जीरो। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब जीरो स्त्री संग, जैसे गृहस्थ में थोड़ा लाइसेंस है, इस तरह से नहीं, निरुद्ध मतलब बिल्कुल ही रोक दिया है इंद्रिय से। इस प्रकार से ये नियम है शुद्ध होने के लिए। तो संयम प्रधान मतलब इंद्रिय संयम। ये अच्छी बात है कि वैदिक सभ्यता में जिसकी इंद्रियां जितनी अधिक संयमित होती हैं उसको उतना अधिक सम्मान प्राप्त होता है कि नहीं? स्वाभाविक रूप से वैसे भी इस जगत में भी जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं वे अन्यों से अधिक सम्माननीय हो जाता है, स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से। बाकी बाकी सारे लोग इंद्रियों के दास बने हुए हैं, तो जो व्यक्ति इंद्रियों को अपना दास बनाया हुआ है, ये बहुत मुश्किल कार्य है। पूरे विश्व को अपना शिष्य बना सकता है अगर उन वेगों को सहन कर ले, आसान बात नहीं है। इस बात को पांचवें स्कंद में कहा गया है, विदुर विगत करके एक श्लोक है कि भगवान का नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति तुरंत ही, चाहे वह चारों वर्णों के बाहर भी क्यों ना हो, तुरंत ही वह शुद्ध हो जाता है। तो एक भक्त जिसने इन षड उर्मियों को, काम क्रोध इत्यादि, उर्मी मतलब वेव्स, जो वेग वेव्स ऊपर उठती रहती हैं, ऐसे काम क्रोध इत्यादि जो वेग हैं उनको जो सहन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ऐसा भक्त जो कि प्रेमवत महाराज हैं, भगवान के शरणागत है, भगवान की शरण लेकर के जिसने इन षड उर्मियों को जीत लिया, उसके लिए क्या संभव है, ऐसा करके बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। प्रियव्रत महाराज ने एक दूसरा सूर्य उत्पन्न कर दिया तो कौन से आश्चर्य की बात है। इतना कठिन है इन छह वेगों को संयमित करना, तो इसलिए संयम प्रदान होने के कारण वह प्रतिष्ठित होते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। अन्य जन यथा गृहस्थ आदि शब्द इत्यादि इंद्रिय विषयों को कर्ण आदि इंद्रिय रूपी अग्नि में आहूत कर देते हैं, अर्थात वह अनासक्त भाव से इंद्रिय विषयों का भोग करने का अभ्यास करते हैं। मतलब इंद्रिय विषय तो भोगते हैं लेकिन संयमित रूप से, ऐसा नहीं कि नॉन, अगर किसी वस्तु का लाइसेंस मिला इसका मतलब ये नहीं कि उसको खुली छूट मिल गई उस प्रकार का कार्य करने का। इसका अर्थ यह है कि इंद्रिय विषयों को तो भोगते हैं लेकिन अनासक्त भाव से, अर्थ बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। अपने कारण का मतलब है जो भी ज्ञानेन्द्रिय हैं उनका भोग, देखिए ब्रह्मचारी लोग बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम मतलब कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में नियमित रूप से इंद्रिय तृप्ति, नियमित मतलब रेगुलर नहीं, नियमित मतलब संयमित, नियम से इंद्रिय तृप्ति अलाउड है। अब जैसे क्या खोल के बताएं, लेकिन भाई जैसे मतलब भाई पत्नी से बात कर रहा है तो कान बात करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं गृहस्थ आश्रम में चला गया तो कहीं पत्नी से बात ही नहीं करेगा या बच्चों से बात नहीं करेगा। तो रूप रस गंध इत्यादि जो कुछ भी है उनका संयम से भोग करना या उपयोग करना, ऐसा कह सकते हैं। रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स, बड़ा प्रभुपाद जी पहले श्लोक में जो आपका उपदेश अमृत का है उसमें बड़ा स्पष्ट समझाते हैं। भक्ति सामित महाराज क्लास दे रहे थे इस पे, तो कह रहे थे कि उपस्थ का उपयोग, प्रभुपादी तात्पर्य में कहते हैं उपस्थ का उपयोग केवल कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न के लिए होना चाहिए, ये गृहस्थों के लिए है और ये इंस्ट्रक्शन ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। क्या समझते हैं, दे शुड नॉट बी व्हाट इज सेड बैचलर डैडीज, महाराज बता रहे थे इस बात। तो अपने इंद्रियों को संयमित करना यह बहुत आवश्यक है, ये बात यहाँ पे सिखाई जा रहे हैं। तात्पर्य छोटा सा है, मैं स्वयं पढ़ लेता हूँ। मानव जीवन के चार आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद बड़ा सुंदर बता रहे हैं। देखिए कोई कह सकता है, सोचेगा कि गृहस्थ जीवन तो भोग के लिए है, हम कहाँ मंगल आरती जाएंगे। बहुत बार आप लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, अरे हम तो गृहस्थी में है, इतना जब थोड़ा करेंगे, इतना भक्ति थोड़ा करेंगे, ये थोड़ा करेंगे, वो थोड़ा करेंगे, लेकिन वस्तुतः सारे आश्रम पूर्ण योगी बनने के लिए है, भक्ति बनने के लिए, भक्त बनने के लिए। किसी भी आश्रम का उद्देश्य भोग नहीं है, थोड़ा लाइसेंस दिया जाता है गृहस्थ आश्रम ताकि व्यक्ति पाप कर्म ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि, और बहुत सारी बंदिशें होती हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और साथ साथ पहले अपना खाने से पहले बाहर जाओ, बुलाओ, कोई भूखा है कोई भूखा है कोई भूखा है, इस प्रकार से बहुत सेल्फलेसनेस की भावना कल्टीवेट की जाती है। तो हर आश्रम का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, लेकिन क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम जो नींव है वह खत्म है, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम जाकर भी गृहस्थ नहीं, ग्रहमेदी आश्रम कह लीजिएगा जहाँ जाता है, तो भक्ति नहीं करना चाहता, ये दिक्कत है। और फिर इसकी कठिनाई कहाँ अनुभव होती है, वानप्रस्थ में, क्योंकि आसक्तियां बहुत बिल्डअप हो गई, और उसके बाद संन्यास तो कोई सोचता ही नहीं लेने के लिए। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, इसको कुछ टीका करिए, इसके ऊपर कुछ सुनाई नहीं पड़ा।
श्लोक ऋषभ, भगवान ऋषभ देव बोलते हैं नायम देह,
ये तो बोलते हैं कि भाई ये तो ठीक है, आप बता रहे हैं कि वह ये शरीर भोग के लिए नहीं बनाया है, तो ये तो बात, ये तो इस पर तो टीका करनी है कि क्यों भोग के लिए बनाया, मानव जीवन भोग के लिए क्यों नहीं बना, क्या दिक्कत है।
मानव जीवन एक जंक्शन की तरह,
जीवन तपस्या के लिए बना, ठीक, दिव्य तपस्या के लिए, और
आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशुओं में भी है। धर्म ही जो है विशेष मानव को बनाता है, तो वो विवेक के द्वारा ही उसको जो है वो एक मानव कर सकता है। बाकी योनियां जो है भोग योनियां है, तो मानव ही जो है वो तपस्या कर सकता है और इस जीवन में ही जो है अपने जन्म साइकिलिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ को वो छोड़ सकता है।
ठीक,
तो ये
सही है। इसलिए जब अगर इस बात को व्यक्ति समझ जाएगा तो जो भी आश्रम के नियम है उसको पालन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। कोई आर्मी में भर्ती कहे ले, ले और कहे मुझे ये 10 किलोमीटर दौड़ाते क्यों है, तो कोई उसका मतलब है? आप कोई ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करे और कहे मुझे मंगल आरती उठने के लिए क्यों बोलते हैं, जप के लिए क्यों बोलते हैं, या फिर कहें कि भाई भागवत क्लास में क्यों जाना है, तो फिर आए क्यों आश्रम में, ये सोचना चाहिए। रोटी तो मिलती है 9 बजे रोहन, वो ठीक है, मैं हमेशा भक्तों से निवेदन करता हूं कि जो लोग आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं उनके हृदय में ये जरूर होना चाहिए कि मुझे साधना बहुत अच्छी करनी, नहीं तो किस लिए, है ना। आर्मी में जाएगा गोली ही चलानी नहीं आई तो फिर आर्मी का के लिए ज्वाइन करी, एक विचारनी बात है ना। हाँ मैं सीमित सीमा पे लड़ने भी अपने एक ने पॉइंट ये है कि हम मतलब है ना, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देखिए गीता में लिखेंगे कि भक्ति में जो नियम है वो ऐसे फॉलो करने होते हैं जैसे मिलिट्री का डिसिप्लिन। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोला, आप लोग तो मोस्ट ऑफ ऑल ठीक ही कर ही रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ एक विचार रखना चाहिए कि आश्रम ज्वाइन ही क्यों किया। तो इसलिए साधना, अपनी साधना भक्त जो भी हमारे, और कोई बहुत ज्यादा कठिन तपस्या नहीं बताई जा रही है यहाँ, लेकिन 10 किलोमीटर तो भागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फायर रहना चाहिए, और फायर अगर स्वयं नहीं है तो दूसरा जला पाएगा, ये बहुत बहुत मुश्किल है। थोड़ा तो मतलब कुछ तो कुछ होना चाहिए ना फायर के, हाँ भाई मुझे भक्ति में अच्छे से प्रगति करनी।
एक आर्मी कम्युनिटी जितना ट्रेन करता है वो उतनी ज्यादा माया से बचता है, तो जितनी ज्यादा हम अच्छी साधना कर पाएंगे उतना ज्यादा हम माया से बच पाएंगे।
उतना पहली बात तो उतना समझ में आएगा कि हम कितना माया में हैं। पहले ये तो समझ में आएगा कि हम कितने गंभीर, हमारा जो बीमारी है वो कितनी गंभीर है, लेकिन खैर पढ़ते हैं। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। ये इंद्रिय संयम अग्नाशी जुहूर्ति वाला श्लोक था। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंद्रिय विषयों से ही दूर रहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मन में आ रहा था कि हमारे खेत में आज 10 लड़के घुस गए पानी पीने के लिए, नहीं मूली खाने के लिए, बोले तो पानी पीना है, हमने कहा पानी तो मैंने बाहर लगा दिया, बाहर जाओ, जाते जाते भी 1-2 मूली उखाड़ ही ले गए। तो ऐसे ही हम सोचेंगे कि इंद्रिय विषयों को हम देखेंगे, सूंघेंगे या छुएंगे और कुछ नहीं होगा, जाते जाते भी कुछ संस्कार छप जाएगा। जैसे महाराज बता रहे थे कि गोबर आप मिट्टी पे थापेंगे तो उठाएंगे तो साथ साथ कुछ मिट्टी जरूर आ जाएगी। तो हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन ये होगा कि हम सोचे कि इंद्रिय तृप्ति करेंगे और कुछ होगा नहीं, उसकी छाप तो मन में पड़ी जाती। ये सब बातें सिद्धांतिक है, क्योंकि आप हम अपने जीवन में हमें हर समय हर कोई व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं करता है, तो गोबर की कितनी छाप पड़ा रहे हैं हम लोग। ये भक्ति में भी लागू होती, भक्ति के संस्कार तो कभी नष्ट नहीं होता। आप जितनी बार भगवान को देख रहे हो, जप कर रहे हो, सबका संस्कार मन में जा रहा है, ऐसे भोग का संस्कार भी जा रहा है। तो इसलिए अगर हम मन को, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मन बहुत चंचल है, लेकिन एक बहुत बड़ी उसकी अक्षमता है, बता सकता है, बताइए
बताइए। अक्षमता यह है कि कहीं भगवान के अलावा कहीं और वो टिक नहीं सकता।
ओके, एक है, और
जब तक इंद्रियों से विषय का इनपुट नहीं हुआ तब तक उसका उस पे वो सोच नहीं सकता, और उसका न दृष्टो न श्रुता
अदृष्टात असतात भावत ना भावो उपजायते, जो आपने देखा नहीं जो सुना नहीं मन में आएगा नहीं। तीसरा एक और है कि मन चाहे कुछ भी कर ले, अगर आप अपने इंद्रियों को सीमित कर ले हैं तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। तो मन कह रहा है पिक्चर देखने चलो, तो बुद्धि के द्वारा आप ना नहीं करेंगे। कभी कभी इस तरह से सोचिए कि मन हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम उससे कोऑपरेट क्यों करें, सीधी सीधी बात। एक ही अशत्रु हमारा है, वह हमारा मन, भागवत के शब्द है। हम लोग पारा सोचते ये व्यक्ति शत्रु है वो शत्रु है, लेकिन एक ही व्यक्ति शत्रु है, वो हमारा खुद का मन, और कोई शत्रु नहीं। गीता में भगवान ने पुष्ट किया। तो ठीक है, तो मन में वश में रखना बहुत आवश्यक है। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी भोग वासनाएं हैं वह भी एक, या इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, वह एक शब्द की तरह है। हम सोचते हैं हमें चाहिए, तो हम सुनते हैं उस विचार को, उस इच्छा को सुनते हैं हृदय में। ये बात आप समझ पा रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वह एक प्रकार का शब्द है, विचार कीजिएगा। और वो शब्द का प्रवेश कैसे होता है? श्रवण के माध्यम से। जब हम भौतिक शब्द सुनते हैं तो हृदय में भौतिक वासनाओं का निर्माण होने लगता है। तो इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि ब्रह्मचारी भौतिक शब्दों से अपने को दूर रखता है, तभी वह मन को संयमित कर सकता है। वो जो कुछ भी इच्छा है वह शब्द के रूप में होती है। इसके लिए आप अनावृति शब्दात सीरीज सुनिएगा, भक्ति विज्ञान महाराज का। ये शब्द जो है ये तो आप जो मेरे मुख से सुन रहे हैं वैखारी कहते हैं, उसके बाद पश्यंती वाक, मध्यम वाक और एक और वाक था, तीन लेवल, चार लेवल के शब्द होते हैं जिसको हम सुन नहीं सकते, वो सूक्ष्म रूप से होते हैं। तो इसे वेदों में वर्णन है, बड़ा अच्छे से बता रहे थे इन बातों को। तो जो इच्छाएं हैं वह सूक्ष्म रूप से शब्द ही है, शब्द के रूप में। जैसे बोला जाता है सैक्षता बहुश्यामा, भगवान ने इच्छा करी कि मैं बहुत हो जाऊं तो सब पूरी सृष्टि हो गई, तो इसीलिए बोला जाता है कि वो शब्द था, और ओम से पूरी जगत की सृष्टि हुई। तब जानते ही गोपाल तो अपने उपनिषद में वर्णन है, ओम से ही पूरे जगत की सृष्टि हुई, शब्द से ही। तो ये बहुत, वो बहुत गंभीरता से बता रहे थे इस बात को कि हमें जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वह शब्द के द्वारा सृष्टि होती है। भौतिक या आध्यात्मिक कुछ भी कह लीजिए, प्रजल्पो नियमाग्रह। प्रजल्प क्या होता है? दुनिया की वार्ता होती है ना। तभी तो महाप्रभु ने कहा कि ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य कथा ना कही बे। तो वहीं से भौतिक इच्छा का निर्माण हो जाता है। कहीं भी आप देखिएगा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता चुके हैं दूसरे अध्याय में, इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ आत्मा। बुद्धि जो है आत्मा की पड़ोसन है, और जब हम कुछ भौतिक शब्द सुनते हैं तो फिर इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। कभी आप देखिएगा, कोई भी इच्छा जागृत हुई है ऐसी वस्तु का जिसके आपको कोई अनुभव नहीं था, पहली चीज शुरू हुई थी शब्द से। देखने से नहीं होती सारी इच्छा, बहुत सारी वस्तुओं जिनका अनुभव नहीं होता उनको देखने से कुछ भी आपको ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, कुछ नहीं होता। आप देखिए, हम मैंने से शराब कभी नहीं पी, शराब की कितनी भी दुकानें हम देख लें कभी इच्छा नहीं होती जाने की, कभी इच्छा नहीं होती। लेकिन जिसने पहली बार पी उसको, उसने पहली गुड़गान सुना, अरे यार बड़ी अच्छी है ये, जो भी बोलता होगा जिसने पिलाई होगी, तब उसके हृदय में इच्छा आती, चल मैं भी ट्राई करता हूं। मुख्य है श्रवण। इसका रिवर्स प्रोसेस भी है, आप जानते हो, जो कृष्ण कथा सुनता है भगवान स्वयं इसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। बहुत सुंदर बात है, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान को किस दृष्टि से, किस श्रद्धा से देखते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम, अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। शुद्ध ब्रह्मचारी हमें अगर बनना है तो एक ही तरीका है, भगवान के कीर्तन में लगना, भगवान से इतर कोई वार्ता नहीं करना। ये सब बातें श्रीमद् भागवतम में, आप नारद जी के उपदेश में जरा सुन लीजिएगा कि कोई भी बात अगर भगवान के संबंध में नहीं है तो बुद्धि को ऐसे घुमा देगी जैसे एक नाव, झंझावात बोलते हैं, चक्रवात, चक्रवात में फंस जाए, उसमें कोई रस्सी नहीं। और बार बार हम इस बात को, मैं प्रवचन में बोलता हूं, फिर वही दिन में कितनी सारी बातें हम सुनते हैं जो भगवत संबंधी नहीं होती, इसीलिए तो मति भगवान में नहीं लगती। वह संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्णा की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है केवल सुबह सुबह। ये लिखा है इसमें। अगर दिन भर संभव नहीं भी हो तो भी हरि कथा सुनना चाहिए, लेकिन हरि नाम से या हरि नाम हरि कथा के संपर्क में अधिक से अधिक रहने का प्रयास हमें करना चाहिए। सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर। हाँ, महाप्रभु एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर आपकी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ बात नहीं कीजिए। ऐसे विचार कर रहा था, कितना कठिन उपदेश। एक एक लाइन विचारणीय है, चैतन्य भागवत की एक लाइन ही कितनी भारी पड़ जाती है। ऐसे बहुत सिंपल सा ग्रंथ लगता है लेकिन कितनी भारी है। अगर मेरे से जरा सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलिए। अब कितनी प्रीति है ये हम इवैल्यूएट कर सकते। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानस समाज की समान प्रवृत्तियां हैं। इसको पहले पूरा पढ़ता हूं। किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इस संबंध में मनु महाराज की उक्ति है, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफल। ये चारों प्रवृत्तियां सामान्यतः पाई जाती हैं इंसानों में, लेकिन अगर इसे निवृत्त होता है तो व्यक्ति बहुत बड़े फल की प्राप्ति करता है, बहुत बड़े फल की प्राप्ति करता है। इस जगत में कुछ छोड़ता है तो आगे के जगत में उसे कुछ प्राप्त होता है। इस जगत की वस्तुओं को पकड़ा रहेगा तो उसकी उच्चतर गति नहीं होगी। ये बात समझना चाहिए। और अद्भुत बात यह है कि हमारे तथाकथित माता पिता केवल इसी जगत के बारे में जानते हैं। ये एक सबसे बड़ी कठिनाई है जो हम समझ नहीं पा रहे। बहुत गंभीर बात है, वेयर आर वी गोइंग फ्रॉम हियर। सच्चिदानंद महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि अब हम यहां से कहां जा रहे हैं। एक अच्छा रिफ्लेक्शन सुबह मेरे मन में आया था कि हम सब लोग एक यात्रा में हैं, हम सब लोग। बहुत गंभीर बात है, हम कोई किसी के जीवन के नियंत्रक या नियामक नहीं है। हम सब लोग एक यात्रा में हैं और वो यात्रा अंत तो भगवान के चरणों में ही होगी। अब उस पे कौन व्यक्ति किस गति से जाना चाहता है, कोई इस मेन रोड को छोड़ करके साइड से जाना चाहता है। साइड का मतलब थोड़ा सा जिसे डिटूर कहा जाता है, मतलब थोड़ा इधर भी जाके देखूंगा पलवल में क्या है, होडल में क्या है, ऐसा फिर लौट करके फिर वृंदावन आऊंगा ऐसे करके। तो मुझे हमेशा हंसी पसंद नहीं प्रभु। कभी कोई गंभीर बात होती क्या बताया, मेरे माइक दीजिए इनको, क्या समझा रहा हूं मैं। ये बात थोड़ा अनोइंग लगती है, इसमें हंसने वाला क्या बात। कोई चीज गंभीर है तो विचार करना चाहिए ना कि क्या बात हम कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है कि हम लोगों के नियंत्रक के नियामक नहीं है। जिन लोगों को हम प्रचार भी कर रहे हैं उनकी स्वेच्छा अल्टीमेटली उनके पास है। मैं कितना कृष्ण को शरणागत होना चाहते हैं उनके ऊपर। बहुत गंभीर बात है, हम सब लोग यात्रा में। अच्छा, ये बात तो स्वयं हिरण्यकश्यपु जी कहते हैं। वो कहते हैं जैसे होटल में सब लोग साथ में आके खाने के लिए बैठते हैं फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार से लोग मिल रहे हैं। और मैं अपने जीवन में कई बार इसको देखता हूँ कि कैसे मेरे जीवन में लोग आ रहे हैं, कभी कभी उनको शत्रु मानने लगते हैं। शत्रु नहीं है वो, कोई शत्रु नहीं है इस प्रकार से, लेकिन भक्त जरूर मित्र हैं क्योंकि वह हमें कृष्ण की ओर जाने में सहायता करते हैं। कोई शत्रु तो नहीं है वस्तुतः। हम इस जगत में कुछ भी नहीं लेके आए थे, हमसे कोई छीन के क्या लेके जाएगा। व्यवहारिक रूप से हमें कुछ करना जरूर पड़ता है लेकिन लोगों को शत्रु नहीं मानते रहना चाहिए। नहीं, इसी उद्देश्य से प्रत्येक समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। क्यों है? अन्यथा लोग अनियमित भोग में लगेंगे और पाप कर्म करके व्यक्ति नीचे गिरेगा। यह है संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो क्या अंतर देखा? ब्रह्मचारी इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल दूर रहते हैं और गृहस्थ केवल इंद्रिय तृप्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, और वह भी कृष्ण भावना भावित। बहुत मुश्किल है, अगर ऐसा भी कोई कर रहा है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वे बहुत अच्छे डिवोटी। कंवर लोचन प्रभु बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं अगर आप अच्छे ब्रह्मचारी नहीं है तो आप अच्छे गृहस्थ नहीं हो सकते, इसलिए शादी मत कीजिए, ब्रह्मचारी रहिए। जो बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है उसको गृहस्थ होना चाहिए, जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है तो उसको गृहस्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उसका देखिए उनके कहने का अर्थ यह है कि जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं है उसकी इंद्रिय संयमित करने की शक्ति नहीं है तो वो और गिर जाएगा, तो उससे बेहतर है कि वह ब्रह्मचारी रहे, जैसे भी स्ट्रगल करे कुछ भी करे। ये तो विनोद की बात है लेकिन इस प्रकार से बोले ठीक है। श्रीमद भगवद गीता की इच्छा।